बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। और आज आज हमारा जो सेशन है डायलेमा ऑफ सक्सेस के नाम से, कामयाबी का अलमिया, और इसमें सबसे पहला जो सा वो सवाल हमें फेसबुक पे आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, ये टॉपिक आपने किस बुनियाद पे रखा है और इसमें क्या थ्योरी और क्या आइडिया। अच्छा, ये थोड़ा सा जो हम टाइटल अजीब सा रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि कोई ना कोई मम्मा ज़रूर है। चीज़ें इतनी आसान नहीं है जैसे पड़ी होती हैं। जैसे बड़ा आसान सा जी गोल सेटिंग, बात ख़त्म हो गई जी गोल सेटिंग, अगर उसमें कोई ना कोई कोई रम्ज हो तो उस रम्ज के लिए तगोदो करनी पड़ती है। आपको बात करके किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ता है और उस नतीजे पे पहुंचने के बाद आपको पता लगता है कि कहीं मेरी जो घिरें थी वो खुल गई। तो ये जो सेशन है छोटा सा हमारा एक टॉपिक जोन सा है, द डायलेमा ऑफ सक्सेस या कामयाबी का अलमिया, ये इस हवाले से है कि आप यकीनन सफ़र करते होंगे, ट्रैवल करने का आपको एक्सपीरियंस होएगा और ट्रैवल करने के मुख्तलिफ तरह के आप तजर्बात कर चुके होंगे। मसलन आप में से जिसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, बेहतर उम्र है, और वो जानता है कि ट्रैवलिंग जोन सी बसों की छतों पे भी की होगी, मुमकिन है उसने साइकिल पे बड़ा पैंडा एक दफ़ा तय किया हो, मुमकिन है पैदल चलने का आपका तजर्बा बड़ा ज़्यादा हो, आप बड़े तजर्बाकार मुसाफिर हों। मेरे एक अंकल हैं तो उनकी पोस्टिंगें जगह जगह होती रहती हैं, उन्हें कहता हूँ आप तजर्बाकार मुसाफिर हैं, आप कभी कहीं कभी कहीं कभी कभी कहीं। अब ये साथ साथ फिर आपने आज की जो लेटेस्ट आसानी है हवाई जहाज़, इस पर भी ट्रैवल करके कईयों ने देखा होगा। अमूमी तौर पे वो तमाम सफ़र जिसमें थोड़ी सी सफ़र की सुबतें या तकलीफ उठानी पड़ती है, वो सफ़र एक साथ ही साथ आपको थकावट देता है, और वो थकावट जोन सी है वो चेहरे की गर्द से पता लग जाती है, वो चेहरे के स्ट्रेस से पता लग जाती है। यानी कह लीजिए कि मुसाफिर का चेहरा वो पहचाना जाता है, मुसाफिर का चेहरा कि वो ट्रैवल करने वाला है। वो जो पेन है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो तकलीफ है जो उसे उठानी पड़ती है, वो उसे मंजिल का इनाम तो मिलता ही मिलता है। सफ़र के हवाले से ये जो पेन है ये भी एक किस्म का उसका आउटकम है, जो पैंडा उसे काटना पड़ता है वो पैंडा भी आउटकम है, उसे उस पैंडे के वजह से ये नतीजा मिलता है। मुझे आज भी याद है कि मैं उम्र मेरी बहुत अभी थोड़ी थी और मैं जिम्मेदारी इदारे की मेरे पे आ गई, 500-600 बच्चे पढ़ा करते थे, तो एक दफ़ा बड़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी। उस ज़माने में तो कोई साइकोलॉजिस्ट का शऊर भी नहीं था, लेकिन ये था बाज़ तबीब बाज़ डॉक्टर शायद आपको ज़िंदगी में मिले हों जो एक्सपर्ट तो मेडिसिन के हैं लेकिन साथ ही साथ उन्हें थोड़ी सी इंसानी नफ्सियात का पता है। तो कुछ ऐसे ही डॉक्टर से मेरा वास्ता पड़ा, तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि देखें इसकी जो उम्र है वो 19-20 साल है, जबकि जिम्मेदारी जो उनसी इस पर आपने डाली हुई है वो बड़ों वाली है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये हमने नहीं डाली, ये इसको शौक़ है पढ़ाने का, और इसके पास मैथमेटिक्स के जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो ढेरों ढेर हैं, 8-10 ग्रुप लगे हुए, 500-600 बच्चा मैथमेटिक्स का पढ़ने आते हैं, इसको शौक़ बड़ा है, और उसकी वजह से इतनी जिम्मेदारी की वजह से। एक बात याद रखिएगा, आप जिम्मेदार हैं तो पेन उठाएंगे, पेन लेंगे, आप बंदे गैर जिम्मेदार हैं तो आप कहेंगे डैम केयर, किसी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, किसी को फ़ायदा हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक बड़ा कॉमन रवैया है, ये टीचर्स बड़े जो जानते हैं टीचिंग को, इदारों को जानते हैं, वो चीज़ को जानते हैं, बस टीचर कहते हैं नहीं मेरा जिम्मा नहीं है, मेरा काम था लेक्चर आगे बच्चा जाने। अच्छा, जो जिम्मेदार टीचर है ना वो बच्चे के साथ तकलीफ उठाता है, वो कहता है उंगली पकड़ के पहले कदम से चोटी तक यानी कामयाबी तक मैंने साथ चलना है। उसके अंदर एक टेम्परामेंट होता है, वो टेम्परामेंट दोबारा वापस उसी मंजिल पे पहले चैप्टर पे आने का, नए बच्चे को साथ मिलाने का, फिर उस मकाम तक लेके जाने का। तो वो जो 8 साल थे जिंदगी के शुरू के जिनमें मैंने 200 टाइम इंटर का मैथमेटिक्स ख़त्म किया जो कि मुझे भूल चुके, ये कलहदा कहानी कि आप जिस चीज़ से इन टच ना रहें वो 200 बार भी पढ़ाई हो वो भूल जाती है। एक कुदरत ने दूसरी आसानी ये की कि मिजाज खोला तो पता लगा कि यार ये सब्जेक्ट जो उनसे थे ये टीचिंग मुझे इन्होंने दे दी, सलाहियत दे दी, लेकिन इन सब्जेक्ट्स का मैं टीचर नहीं। ये बात की जो चीज़ें जो रिकॉर्डिंग्स में और सारे आप लोग नज़र आ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, ये बिल्कुल वही क्लास है जो कभी घर में ड्राइंग रूम में लगा करती थी मैथमेटिक्स की, और आज लाइफ साइंसिस के हवाले से छोटे छोटे टोटके छोटी छोटी बातें सिखाने के लिए और सीखने के लिए हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो सारा सफ़र था उसमें उसने वो जो डॉक्टर साहिबा ने कहा, मुझे उनका नाम या चेहरा याद, जुमला याद, उन्होंने कहा जी दो बातें, एक ये या इसे कहें अपनी हिम्मत अपने काम से बड़ी कर ले, दूसरा ये है या काम कम कर ले। एक और जुमला बड़ा शानदार, उन्होंने कहा यार देखो ये जो कर रहे हैं ना इसकी कीमत अदा किए बगैर ये कामयाबी नहीं मिलती, और वो कीमत स्ट्रेस है। तो मुझे वो कान में कहने लगी आप कितना कमाते हो बेटा? मैंने कुछ लाख बताए गए जी, मेरे इतने को लाख कमा लेता हूँ, उम्र छोटी थी ऐसे कमाने लग पड़े थे। तो वो मुझे कहती है पुत्र ए मनु दे दे ते स्ट्रेस भी मैं ले लेनी है। आपको बस रियली मैं सच बताऊं, वो जो मेडिसिन का पर्चा था वो तो मैंने बाहर जाके फाड़ दिया, क्योंकि मुझे राज पता लग गया कि इंसान जितनी बड़ी कामयाबी की तरफ जाता है उतनी कीमत उसे अदा करनी पड़ती है। तो आज का जो सेशन है वो एक्चुअली अगर आसान बात में कहूँ तो वो द प्राइस ऑफ सक्सेस पे है। कीमत अदा किए बगैर कामयाबी मिलती नहीं है। यही वजह है कि लोग इतनी थोड़ी सी कीमत अदा करते हैं और बड़ी सी कामयाबी मांग रहे होते हैं। कल ही जैसे रिजल्ट आया ना, आपको भी तजर्बा हुआ होगा, मेरा भी इदारा है और कहीं आप में से पढ़ाने वालों को अंदाजा कीजिएगा, एक दिन पहले शाम को बच्चों के साथ बैठ के मैं बात कर रहा था कि तुम में से जिसने कल फेल होना ना उसको भी टॉप की तवक्का है। उसने बोया अमरूद है, रो के दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह अंब लग जाते क्या बात है। वजह क्या है? इंसान, मेरा जुमला याद रखिएगा, सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देता है, और ये उसका कसूर नहीं है। ये बात बड़ी समझने वाली, जो बड़ा ही गहरा नुक्ता है ना इसमें, वो गहरा नुक्ता ये कि ये उसका कसूर नहीं है, ये मिजाज इंसान का आदम से बना। ये जुमला जरा दोबारा ले लीजिएगा जी, आप इस बात को दोबारा तवज्जा से कुर्सी को छोड़ के सुनिएगा कि ये मिजाज उसका आदम से बना है। कैसे? इंसान शुरू में वीक था, आंधी आती थी उड़ा के ले जाती थी, सांप आता था एक को मार देता था, शेर आता था धाड़ता हुआ आता था दो को खा के चला जाता था, सैलाब आता था कितनों को बहा के चला जाता था, और पता लगता था कि वो जो लिबास मैंने जेबतन किया है बड़ा अच्छा सा ताज़ा पत्तों का लिबास और उसे मैंने डोरियों से बांधा है, बकरी पीछे पड़ गई है, और पता लगता था कि मैं जानिब मंजिल तो लिबास के साथ चला हूँ लेकिन मकाम व मंजिल पर पहुँच के नंगा हूँ। वजह यह थी कि जालिम बकरी मेरा लिबास ले गई। ये वो सारे मसले थे, जब आए तो इंसान वीक था, इंसान कमजोर था। और जब भी आप याद रखिएगा कमजोर होते हैं तो हमारे सूफी शायर बड़े सियाने, ये बड़ी बड़ी वजह है सूफिया की वजह से इस्लाम फैलने की, ये इंसानी नफ्सियात को जानते थे। शायद आलिम मौलवी कम जानता हो, मेरा इतराज़ नहीं है उस पर, शायद कम जानता हो, लेकिन जितना एक सूफी इंसानी नफ्सियात को जानता है अंदाजा कीजिए। यही वजह है कि एक सूफी अपनी जिंदगी में 96 लाख लोगों को मुसलमान कर देता है, अंदाजा कीजिए ना। वजह क्या है? उसे इंसानी नफ्सियात का पता है, उसे पता है कि अगर मैं सख्त तराजू लेके माप के तोल तोल के रखूंगा तो मेरी जेब खाली रहेगी, उसे पता है मैं खोटा जेब में डालूंगा कुछ अरसे बाद खरा हो जाएगा, ये एक आर्ट है। तो वो एक पुराने सूफिया में एक बड़ा नाम था, उनका नाम था मियां मोहम्मद बख्श। उनके मुझे एक शेर का मफहूम याद है, ये आज की सेशन को समझाने के लिए वो शेर का मफहूम बड़ा जरूरी है। वो फरमाते हैं कि जो माड़ा होता है ना उसका जोर तो चलता कोई नहीं, माड़े दा की जोर मोहम्मद, वो माड़े का जोर नहीं चलता, उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, एक भाग जाओ दूसरा माफी मांग। तो शुरू के इंसान ने ये दोनों काम बहुत किए हैं, सैलाब आ गए इलाका छोड़ दिया, जगह छोड़ दी, पहाड़ों पे चढ़ गए, चंद दिन पहले नहीं पता लगा एंथ्रोपोलॉजी क्या है, लैंड स्लाइडिंग हुई, सारे हमारे पठान भाई केपीके के पहाड़ों पे चढ़ के बैठ गए, कोई यार तूफान तो नीचे। इंसान की बेसिक नफ्सियात में है कि जब भी उसकी औकात से बाहर का मसला होता है या वो भाग जाता है या वो मान जाता है कि भगवान यही है। वो मक्खन चोरी करने वाला हनुमान ही क्यों ना हो, अगर बार बार चोरी करे और मोम्मा हल ना हो तो वो कहता है कि इस मोम्मे के पीछे खुदाई है। ये इंसान की वीकनेस की, लेकिन क्या पता था कि दुनिया में कैसे कैसे कमाल लोगों ने आना है, ये तो इब्तदा थी, कहीं जीन्स की मेमोरी में बात छुपी रह गई। क्या भाग जाना, क्या थक जाना, क्या माफी मांग लेना, क्या सरेंडर कर देना। लेकिन आज का इंसान जो तरक्की करते करते आखिरकार किसी मकाम पे पहुंचा, उसे समझ आई है कि कीमत है भाई, ये खड़े हो जाना कीमत है, ये जो फाइट कर लेना कीमत है, इसके बगैर अजमत नहीं है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, आप अजमत के मीनारों की किताबें पढ़ दें, आप दुनिया के जितने बड़े नाम हैं उनके ऊपर किताबें पढ़ दें, आप किसी प्रोफेशन के इंसान अगर पीक पे बैठा है उसकी लाइफ को पढ़िए, आप किसी शोबे के इंसान जिसने तख्लीक का काम किया है, वो तहरीर के जरिए किया है, पेंटिंग में किया है, दुनिया के म्यूज़िक दिए हैं, आप सुन के हैरान होंगे। मैं एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, बड़ा दीवाना, मतलब मैं उनका नाम या उनको उनके अशार को पढ़ के सुन के मस्ती में चला जाता हूँ। उनका नाम है अमीर खुसरू। अमीर खुसरू तारीख का एक ऐसा कमाल सपूत है जिसके अशार की तादाद 350,000 है। मैं ये कहता हूँ वो जहाँ से शेर आते हैं वो दर्द कहाँ से आता है। ये याद रखिएगा कि मेकिंग नहीं मुश्किल होती, वो जो मेकिंग करने वाला मेकर है ना बड़ी तकलीफ में होता है। पुराने इस पे बड़े बड़े मुहावरे बने हुए। मोहम्मद बख्श साहब का तो शेर का मफहूम ये कि माड़ेदा की जोर मोहम्मद, उसने यहाँ तो माफी मांग लेनी है, चोई साहब पैरी पहना है, चोई साहब माफी दे दो, यहाँ उसके पास ऑप्शन ये है दौड़ लगा, कहना पिंड ही छाड़ जो, चोरी की है इस तो पहले कि हाथ चोरी साढ़े बढ़ाए, असी पिंड छाड़ के ना असी दूर कितने नस जाने, ये कॉमन है। एक दूसरी जो इंसानी नफसियात है वो ये है, वो है इल्ज़ाम लगा देना, बच जाना, बुरा भला कह देना। अंगूर खट्टे हैं, ये जो अंगूर खट्टे हैं याद रखिएगा ये भी आदम से चली कहानी है। ये ट्राई करता था, होता नहीं था, कहता था ये है ही नहीं सही, ये आपका कोई कसूर नहीं है, ये मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं कभी कभी अंगूर खट्टे हैं कर जाता हूँ। ये आदम की जबिल्लत में है। याद रखिएगा जैसे खाना खाना और पैदा होना, एक टाइम के बाद चलने लग पड़ना, एक उम्र के बाद बलोगत का आ जाना, एक वक्त के बाद बालों का सफ़ेद हो जाना, एक वक्त के बाद बूढ़ा हो जाना, एक वक्त के बाद दांतों का उधर जाना, इंसानी जबिल्लत और जीन्स में कहीं हर चीज़ प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में फीड है। इन द सेम वे मिजाज की एक किस्म, ज़रा ये ध्यान से नुकता समझिएगा, मिजाज की एक किस्म, इंसान के मिजाज का एक हिस्सा उसकी फितरत है और वो उसके जीन्स की कोडिंग में फिक्स है। दुनिया का हर मिजाज का इंसान थोड़ा बदौत ज्यादा कम वो भागेगा जरूर सिचुएशन से। आप पहले बचने की कोशिश करते, शामत ना ही आए मेरी यार, सबक कौन सुनाएगा सबके हाथ नीचे, होता कि नहीं होता, ठीक है कि नहीं, चोरी किसने की है, चोर भी कहता ये इशारा कर देता, ये जो ये अच्छा काम नहीं हुआ जी क्यों नहीं हुआ, और जी होंदे ही नहीं, मुल्क ही नहीं ठीक है, आप कामयाब क्यों नहीं हुए, मेरे मामे ने मुझे कामयाब नहीं होने देता। ये फीडबैक बता रहा हूँ जर्नल काउंसलिंग की, कि जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ तो वो एक बड़ा शानदार जुमला, साबिर साहब अक्सर कहते हैं कि लोगों को आम बंदा नहीं खोल सकता, लेकिन जिसका काम है उसके सामने लोग खुद खुल जाते हैं। गलत नहीं आपको कह रहा, यानी उसके सामने खुलना पसंद फरमाते हैं, वजह ये उसका काम है। ये थोड़ी सी मिसाल लीजिएगा, आप कितने लोगों के सामने अपना मुंह खोल के दिखा सकते हैं, दांदे हुए ऐ मेरी दाढ़ है, ये भी दर्द है, पीछे वाली नहीं है, एवर एंड एवर नहीं है, शर्म आएगी आपको। लेकिन डेंटिस्ट के सामने जाके बड़े आराम से आप ऐसे बैठते हैं, ए मुंह खोलो जी, हाँ केड़ा दांद है जी, ए वाली उंगली जरा पीछे लाना। क्या उसका काम है। इन द सेम वे ये इंसानी नफ्सियात को किताबों से पढ़ने के बाद जब आप इंसानों को पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि दुनिया के बड़े नाम बड़े तेज थे, ये सही दानिश्वर लोग थे, इनको समझ आ गई थी, इन्होंने वाकईतन बताऊं तो दुनिया को नहीं इंसान को फतह कर लिया था, इन्होंने दिलों को फतह करने का राज पा लिया था, इन्हें समझ आ गई थी कि इंसान के मिजाज के पेंतरे क्या हैं, इनको समझ आ गई थी इंसान जो उनसे वो सोचता क्यों है, इंसान के सोचने के सबब क्या हैं, इनको समझ आ गई थी इंसान किस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करता है। आप में से शायद को बॉडी लैंग्वेज का वर्ड जानता, पूरी साइंस है ये, बिल्कुल ऐसी चीज ही है जो शायद किताबें पढ़ने से पता तो लग जाती, आती नहीं है, ये एक बड़ा अलमी है हमारी सोसाइटी का। हमारे 99% स्पीकर्स खुद मोटिवेशन नहीं होती, किताब मोटिवेशन की पढ़ के मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। आप कभी ड्राइविंग की किताब पढ़ के ड्राइविंग सिखा दें, ना आएगी ना सिखा सकेंगे, जो है नहीं वो दे नहीं सकते। तो याद रखिएगा अजमत का, अजमत के सफर में इंसानी मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। मेरी ये सारी जो बातें आपने सुनी है इसको वक्ती तौर पे आपने पार्क कर देना, पार्किंग पे लगा दिया, जैसे गाड़ी पार्किंग पे लगा, मैं एक नई गाड़ी को निकाल के गुफ्तगू को आगे चलाने लगा हूं। अब जरा याद रखिएगा इंसान जब भी आगे बढ़ने का सोचता है, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले लेक्चर पे जाएं तो गुफ्तगू ये थी, ये दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसके अंदर विल है और विल उसको खड़ा करती है तूने कामयाब होना है। सारी दुनिया हैरान होती है यार ये थकता क्यों नहीं, यार ये बीमार है, यार ये इसकी गूनियां जो सी हैं वो जख्मी हो चुकी हैं, घुटने छिल चुके हैं, माथा फट गया है, पत्थर आ रहे हैं, पांव तक खून चला गया है, हटने को तैयार नहीं है। दुनिया के कह रही है जो चाहो, कह रहा है इस हाथ पे चांद, इस हाथ बदलने वाला नहीं। ये कौन सी ताकत है जो अंदर आती है और कहती है कि सारा जमाना एक तरफ और मैं अपनी बात पे ला इलाह पे खड़ा। हजूरे वाला याद रही विल, इसको हम एड्रेस कर चुके हैं। आज विल से अगली बात करने लगे। विल से अगली बात यह है कि इंसान का ये अलमिया है, इंसान का ये एक मामा है, इंसान का एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इंसान जब भी अजमत की तरफ आगे बढ़ता है, एक शोबे को बेहतर करने की कोशिश करता है। यू नो अबाउट दैट, सेल्फ हेल्प को इतना पढ़ा है, बहुत ज्यादा काम नहीं करने चाहिए। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, सलामती दे, अरशद जावेद साहब, वो मुझे जब मिलते कहते यार तू बहुत ज्यादा काम कर। मैं उन्हें अक्सर प्यार से कहता हूँ कि सर गौर से देखो तो मैं एक ही काम कर। बाज़ुकत लगता है कि चीजें बहुत सी हैं, अगर जोड़ें तस्वीर के टुकड़ों को तो एक ही काम लगता है। अजमत का पहला राज सब जानते हैं कि वी नीड फोकस। बहुत सी चीजों में अजमत हासिल करना मुमकिन नहीं। आप एक चीज को सेलेक्ट करके फिर पूरे का पूरा अपना आप उसमें डाल देते हैं। जब पूरा अपना आप डालते हैं, उस डालने की वजह से कुदरत क्या करती है कि यकसुई फोकस जो मिलता है उसका इनाम ये होता है कि वो चीज अचीव हो जाती है। मसलन जना ने पाकिस्तान बनाया, अगर 6-7 और काम 8 कर रहे होते, जरा कभी जना की जिंदगी का ये शेड देखें, जना पाकिस्तान बनाने वाला कैसे बना था, आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये आपके लिए गिफ्ट है आज का सवाल, इस पर तहकीक करनी है। मैंने 570 वाकियात जना की लाइफ के पढ़े हैं और मुझे तब जाके समझ आई है जना बनने का अमल पाकिस्तान के बनने के अमल से कम नहीं था। ये तहकीक कीजिएगा आप मेरी बात को, आप कहेंगे कि सर ये फर्स्ट टाइम हमने बात सुनी है कि जना के बनने का अमल, क्योंकि आप राज जानते हैं, एक बंदा अगर करोड़ रुपया प्रोड्यूस करे, करोड़ रुपया महंगा है या वो बंदा महंगा है? तखलीक का असूल है, मखलूक हमेशा खालिक के सामने आजिज होती है। तखलीक का असूल है कि जिस मशीन से जो चीज बन के आएगी, मशीन इंपॉर्टेंट है, चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। कहीं दफा किस एतबार से वो दोबारा प्रोड्यूस कर सकती है, चीज मिट भी जाए दोबारा आ सकती है। वो बुनियादी कुलिया फिर सेल्फ हेल्प का, जो एक बार कामयाब हो सकता है दोबारा भी, जिसे एक बार अजमत का जायका मिला है दोबारा भी खड़ा हो जाता है। दुनिया की बेशुमार कहानी है। तो ये फोकस कामयाबी का कुलिया है, फोकस के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। फोकस का मतलब ये है तन मन धन, अपनी हर चीज, अपने सच्चे पक्के जज्बात, अपनी बेशुमार ख्वाहिशात को जिबा कर दो, और जिबा करने के बाद फकत एक चीज को पकाओ। मेरे उस्ताद के पास चला गया हनीफ रामे, बड़ा नाम था, बस वजीर आला पंजाब किसी जमाने में। आपको शायद पता नहीं है ही वाज शायर, आपको शायद पता नहीं ही वाज पेंटर, आपको शायद पता नहीं है ही वाज दानिश्वर, आपको शायद पता नहीं है ही वाज सहाफी। तो मेरे उस्ताद को मिलने के बाद उसने सवाल किया कि वासिफ अली वासिफ साहब को नसीहत फरमाएं। अब जरा जवाब का मियार देखिएगा, किस खूबसूरती का जवाब है। मेरे उस्ताद ने कहा कि हनीफ साहब एक काम करें, आप जिस तरह हांडी पकाने के लिए नीचे बालन और एक चीज पकती है, इन सब में से एक चीज को हांडी में डालें, बाकियों को बालन बना के जला दें, कामयाबी नहीं मिलनी। आप किस शिनाख्त से जाएंगे आखिर? क्या लोग कहेंगे? अब मैं आज आपको बता रहा हूं तो आप हैरान हो रहे हैं, शिनाख्त क्या है, कौन सी शिनाख्त, क्या वजह? इतना बड़ा जवाब कि वो दुनिया से शख्स जाने लगा तो आखिरी किताब का इंतसाब वासिफ अली वासिफ के नाम करके गया। उसने कहा जी वक्त के साहिब हाल के नाम, आखिरी तमन्ना ये जाहिर हुआ कि दफन मैंने यहाँ का क्यों ना, यहाँ वो शख्स है जिसने मुझे जिंदगी की सिमत बताई थी। बाज़ुकात आप नसीहत को सुनने के बाद फौरन मानते नहीं हो, लेकिन बंदे को मान जाते। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, ये रूहानियत की बात है। बाज़ अगर नसीहत फौरन नहीं अमल करने वाली होती, नसीहत ने असर दिखाना है 5 साल बाद, बंदे को फौरन पता लग जाता कि यार ये जो बंदा मुझे कह रहा ना, उसको लालची कोई नहीं, गलत नहीं कह रहा। अजमत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस। यहां तक पहुंच गए सर हम, आप मेरे साथ हैं जी।
yes, sir.
अब फोकस के आने के बाद अगला काम सुनिएगा, जब भी फोकस आएगा और आप दस्त काटेंगे, पैशन आएगा, तो क्या होगा? दिन क्या रात क्या खबर नहीं, दुनिया गहरी थक जाओगे, ना कैसे थकूंगा, मुझे तो काम ही मजा देता है। वो कह रहे जी आप, मैं एक जुमला अक्सर कहता हूं, लोगों को समझ नहीं आती, मैं कहता हूं कहां सच्ची कामयाबी का रास्ता, कमाने का रास्ता नहीं है, पल्ले से लगाने का रास्ता है। मैंने किसी को टेस्ट करना ना, अव्वल मैं कौन होता हूं जी टेस्ट करने वाला, लेकिन बीइंग अ सक्सेस कोच, बीइंग अ गुरु, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ टीचर, वो 17-18 साल यार जिंदगी की आधी जिंदगी माइनस करो तो वो बनती है, आधी इसमें से गुजर गई, आधी शौरी नहीं थी, आधी लटकने वाली थी बसों, आधी जोन सी हुई आपके सामने आ गई। इसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा, मैंने किसी को यह देखना कहां होगा तो मैं देखूंगा कीमत कितनी अदा कर रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं देखूंगा, नेचर का रूल है। नेचर ने आज तक मेहनत का जर्रा जाया नहीं किया किसी का, ये जुमला नहीं भूलना आपने, खुदा ने आज तक ना किसी की मेहनत और ना किसी की मोहब्बत जाया की है। मोहब्बत को पैशन कहते हैं जी, ये वो वाली नहीं है, पारो वाली मोहब्बत नहीं है। अरे फौरन वो जहन में आती है, अल्लाह करे सारे के सारे हमारे शायर इनको मोहब्बत के मानी समझें, ये पा लेने को मोहब्बत समझने वाले को भी शर्म आए, ये पता लगे यार कि मोहब्बत हासिल नहीं होती, मोहब्बत से फोकस हासिल होता है। ये भी नुकता है, देखा कि नहीं। और किसी ने बड़ी शानदार बात की, उसने कहा जी अगर उशू का 40 दिन का आश्रम ज्वाइन किया जाए इंडिया में, पूना में बड़ा खौफनाक सा आश्रम है जहां पर जनाब 10 दिन न्यूड रहना पड़ता है बगैर ड्रेस के, 10 दिन मांग के खाना पड़ता है, 10 दिन खामोशी होती है, 10 दिन फिर आखिरी 10 दिन नसीहत होती है, उसमें सिर्फ नसीहत, कहते खाली स्लेट हो गई, अब हम लिख सकते हैं इस पे कुछ। तो किसी ने कहा कि उस 40 दिन का कोई शॉर्टकट है, तो गुरु बोला, उसने कहा यार बड़ा आसान सा शॉर्टकट है, अगर तुझे सच्ची मोहब्बत हुई और मोहब्बत मिली नहीं है ना, तो वो 40 दिन के उशू का जो अंजाम है वो वही मिल जाएगा तुझे। वजह ये है, वो कहता है जो दर्द 40 दिन बाद पैदा होता है ना, वो बंदे को मिल जाता है। 10 दिन खामोश रहना, ये बोलने को दिल की याद है, नसीहत है, बोलना नहीं है। 10 दिन बगैर लिबास के रहना, क्योंकि ख्याल लिबास से जुड़ा होता है। आप नोट कीजिएगा, आप अपने लिबास के बारे में कॉन्शियस से तो पहन किया है, क्या पहनूं, क्या लगाऊं, कैसा लग रहा हूं, क्या है, किस तरह है, किसके साथ क्या पहनना है, ये कॉन्शियस है। आपका कॉन्शियस भटक रहा था बेशुमार चीजों में, नौकरी, पैसा, ये वो, बीवी, बच्चे, होने वाली बीवी, जो हो चुकी है बीवी, कुछ भी, आप इतनी चीजों में बिखरे हुए थे, लेकिन लाइफ में नई चीज आई, वो था फोकस। कहां से आया? विल से। जैसे ही फोकस आया, आपने सारा कुछ हांडी में डाला और बाकी चीजें जलानी शुरू कर दी। जरा सुनिएगा, फोकस के बाद अगला काम ये है कुर्बानी। सर फोकस आपसे कुर्बानी की तरफ ले जाता है। आपको कोई इतनी जबरदस्त चीज मंजिल दिख रही होती है कि जो मौजूदा चीजें आप कहते हो इग्नोर, आज की तपिश की खैर है, आज की हरारत की खैर है, आज की तकलीफों की खैर है, क्योंकि जो मेरा विजन देख रहा है वो कोई देख नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे? अब वो फोकस आपको क्या करता है, एक अगर साइकोलॉजी की टर्म में करूं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ लेके जाता है। वो क्या है? तकलीफ में राहत का एहसास। सर नॉर्मल तो यही होता है ना जी, कि अगर राहत है तो राहत है, साइकोलॉजी यही कहती है, लेकिन तकलीफ में अगर राहत महसूस होने लग पड़ी है, इट मींस आपकी जिंदगी में फोकस है, आपकी जिंदगी में कोई पैशन है। फिर आ रहा चल रहा है, आपको चलने दो, तकलीफ आ रही है आने दो। इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है कि जी खुदा करे ये जख्म दूर ही ना हो कभी, बड़ा मजा है कलेजे पे तीर खाने में। आप कहते हो यार बर्तन टूट के मुझे लुत्फ आता है, क्योंकि वो जो आंसू चाहिए, वो जो इस्तराब चाहिए, वो टूटे हुए बर्तन से पैदा होता है, उससे पहले तो पैदा ही नहीं होता। सो हमें जब फोकस मिलता है तो याद रखिएगा, एक थोड़ा सा माइल्ड सा एक एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट हो जाता है, और वो एबनॉर्मल बिहेवियर ये है सब कुछ लगा देने का, सब कुछ उजाड़ देने का। अब अगर यहां रुक के एक बात मिसालें देने पे आऊं, तो जितने दुनिया के बड़े लोग हैं थोड़े से आपको खिसके हुए लगते। मैं उनकी बात करूं जो प्रोसेस से गुजर के बड़े बने, खुदा के इंतखाब की बात मैं नहीं कर रहा, वहां तो मेरी माफी है हजूरे वाला, नबी रसूल पैगंबर तो खुदा का इंतखाब है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो प्रोसेस से, जैसे जना की बात, बड़े बड़े लोग थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ से आपको हटके लगते हैं। और बड़ा मशहूर वाक्य हम बच्चों को सुनाते हैं, आप भी सुनते हैं, कि अंडा पकड़ा हुआ था, स्टॉप वॉच हाथ में थी, पानी में अंडा बॉयल करने का टाइमिंग चेक करनी, घड़ी डाल के अंडा देखता रहा, है ना, आइंस्टाइन का कोट किया जाता है आइंस्टाइन से। वो समझाना ये चाह रहे थे, फोकस इतना था कि ये ख्याल नहीं गया कि हाथ में क्या और इसमें क्या है, वो अपने तसव्वुरात में इतना गुम था कि ये परवाह ही खत्म होगी कि नफा क्या है और नुकसान क्या है। सो याद रखिएगा, रियल फोकस आपके नफा और नुकसान के तसव्वुर को टच करता है। ये अगला नुकता है, अगर नफा और नुकसान का तसव्वुर बदला नहीं है, यू आर नॉट डेवलपिंग। मसलन पहले खा के खुश होते थे, अब खिला के खुश होते, नहीं बात आ गई, पता लगा पहले हासिल का नाम कमाई थी, अब देने का नाम कमाई है, क्या खूबसूरत है। फिर रसूल घर आता है, फरमाते हैं आयशा आज क्या बचा है, बकरी उस दिन ज़बह हुई होती है, चंद थोड़े से गोश्त के टुकड़े पड़े हो, चंद थोड़े से, बाकी मांड। फरमाती यार रसूलल्लाह आज यही बचा है, आप फरमाते हैं आयशा जो बांट दिया वो बचा है, وہ بچا ہے جو بانٹ دیے. تو میں وہ صوفی برکت علی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ فرماتے، دنیا کی سب سے سیف جگہ مال رکھنے کی جگہ جون سی ہے، سیف بینک غریب کی جیب ہے، رکھ کے دیکھیں 10 گنا واپس آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم مال کو رکھتے ہیں ان تجوریوں میں جہاں ڈر رہا ہے بینک بند تو ہم گئے. یہ واحد بینک ہے غریب کی جیب جہاں سے ریٹرن ہو جاتا ہے. تو نفع نقصان کا تصور بدلتا ہے جی فوکس کے بعد. اگلا درجہ آ گیا، پہلا فوکس، اگلا درجہ فوکس کے بعد اگلا درجہ کون سا آ گیا جی؟ قربانی. نفع نقصان کا تصور بدل گیا. نفع نقصان کے تصور کے بدلنے کے ساتھ جو اگلی چیز آئی وہ یہ آئی کہ بسا اوقات آپ کی جو ایک چیز کی گروتھ ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ باقی تمام چیزیں مدب ہو کے چپ ہو کے دب جائیں گی. ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ نے کوئی پروفیشنل باڈی بلڈر دیکھا ہو، آپ میں سے کسی نے تجربہ ہوا پروفیشنل، آپ نوٹ کریں کہ وہ آئی کیو میں اچھا نہیں ہوگا. جو پچھلے 15-20 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں، ڈینڈ بیٹھ کے، ڈینڈ بیٹھ کے لسیاں اور بڑے بڑے قیمے والے نان اور سارا صرف یہی کام چل رہا ہے، مکھن ہی چل رہے ہیں. ہوگا یہ، ایک چیز تو بڑی گرو کر گئی ہے، وہ کیا؟ جسم. لیکن ذہن، کیونکہ ذہن بھی ایکسرسائز مانگتا ہے، ذہن کی ایکسرسائز ہے سوچنا، ذہن کی ایکسرسائز ہے نیا سوچنا، ذہن کی ایکسرسائز ہے سوچنے پہ مجبور کرنا کہ میرا ایک ہاتھ کئی صدیوں سے پڑا تھا، میں نے اس کو استعمال کیا تو شروع میں تنگ کر رہا ہے، چند دن بعد اسی میں روانی آ جائے گی. تو ذہن بھی ایسے ہی ہے، وہ کہتا ہے جی کافی عرصے سے پڑا ہوا تھا، اب اس کی روانی کے بعد آسانی یہ ہو گئی کہ میرا ہاتھ یعنی میرے وہ ذہن کے عضلات پٹھے اب کام میں آنے لگ پڑے. ان دی سیم وے، جب وہ ذہن کے عضلات کام میں آنے لگ پڑتے ہیں تو اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ وہ جو اب نارمل گروتھ میں نے کہی تھی، آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، وہ جو باڈی بلڈر تھوڑا سا ڈفر سا لگتا ہے، معافی کے ساتھ ہے نا، کل منو کوٹ پہ آئیے سارے باڈی بلڈر میرے کو آئیں گے، تو اسی جناب ساڈا ٹیسٹ لے لو، ٹھیک ہے کہ نہیں، اسی 50-100 نہیں کراس کریں گے، آئی کیو کا 100 نہیں کراس ہوتا نا ان کا. یہ آپ جا کے ریسرچ کیجئے گا، میں نہیں آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ دنیا کا آج تک کوئی باڈی بلڈر دنیا کے آئی کیو کو 100 کراس نہیں کر سکا. یہ آپ کے لیے نئی انفارمیشن ہے بالکل. اور وجہ یہ ہے، وجہ یہ کہ سارا فوکس ہی باڈی پہ ہے اور بلڈنگ پہ ہے، باڈی بلڈنگ اسی پہ ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا مائیکل اینجلو کا، کہتے ہیں کہ وہ جب مجسمہ بنانے کی طرف آتا تھا تو جب مجسمہ بن جاتا تھا تو یاد آتا تھا 15 دن گزر گئے، اور جب اپنے بوٹ اتارتا تھا تو پاؤں کی کھال بھی ساتھ کئی دفعہ اتر جاتی تھی. دس از دی پیک آف فوکس. یہ فوکس کی انتہا ہے کہ قیمت اگر ادا کرنی پڑی ہے تو اس لیول کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے لیکن تکلیف نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو پاؤں کی تکلیف اس لیے تکلیف نہیں ہے کہ جو نظارہ اس نے بنا دیا وہ اسی میں گم ہو جاتا تھا. بعض اوقات انسان وہ کریٹ کر کے اتنا گم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے تو گمان میں نہیں تھا کہ یار یہ میں نے کریٹ کیا، یہ میرے خیال میں سے حسن خیال کی انتہا ہی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس نے میرے اندر سے جنم لینا تھا. یاد رکھیے کہ تخلیق آپ کے اندر سے جنم لیتی. جس طرح کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز دو بار بنی ہے، ایک بار انسانی دماغ میں، ایک بار دنیا میں. دنیا کی ہر پینٹنگ دو بار بنتی ہے. اور کریٹیویٹی کی انتہا پہ دنیا کا سب سے مشکل کریٹیو کام جانتے ہیں کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کوئی جواب دینا چاہے. دنیا کا سب سے مشکل کریٹیو کام کیا ہے؟ پینٹنگ نمبر ون. اور جی آپ نے کچھ کہا جی؟ سیلف اور جی. دنیا کا سب سے مشکل کام میوزک دینا جی، میوزک دینا. اس سے پہلے دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ بھی. آپ کبھی بھی کوئی دھن بنی ہوئی دیکھ لیں، اس سے پہلے کہاں پر تھی؟ اچھا پینٹنگ کے رنگ دماغ میں ہو سکتے ہیں چونکہ دیکھے ہوئے ہیں، مثلا میں نے براؤن استعمال کرنا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن جو میں دھن بنا رہا ہوں وہ 7 راگ ہیں. یہ ریسرچ ہے جی، 7 راگ ہے، 7 راگوں سے دنیا کے کھربا گانے بنے ہیں جی. اب جا کے ریسرچ کر لیں جی، دنیا میں کھربا گانے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم لتا اور رفیع کے گنتے ہیں تو لاکھوں بن جاتے ہیں، ہزاروں بن جاتے ہیں. دنیا کے سارے سنگرز کے گانے اکٹھے کریں، اربوں کروڑوں بن جائیں گے. آج تک دنیا میں کروڑوں گانے گائے جا چکے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی تخلیق ہے جی، تخلیق کے اعتبار سے لسٹ میں دیکھا جائے. دوسرے نمبر پہ پینٹنگ ہے جی، کیونکہ وہ سارا کینوس ادھر ہوتا ہے اور آپ ڈرا کرتے ہو. فوکس اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی مشکل ترین جو قیمت ہے اس کے لیے وہ بھی ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگلی بات ذرا سنیے گا، اب تخلیق کے نتیجے میں مل گئی عظمت، فوکس ملا، فوکس کے رستے عظمت مل گئی. عظمت کے آنے کے بعد اگلا درجہ یہ ہے، اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ کی عظمت بالکل ایسی ہے جیسے سارے 5 فٹ کے تھے اور ایک دم عالم چنا آ گیا، اس کی ہائٹ زیادہ ہے. आपको पता है दुनिया के बड़े दिमाग जो उनसे हैं वो अपनी बात को कई सालों तक समझा ही नहीं सके। मसलन आज आपने जाके रिसर्च करनी है कि हम सब फिजिक्स पढ़ते हैं, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसकी वजह से नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को मिला था, और आपकी सेकेंड ईयर की किताब FSC उसके बगैर नहीं होती। 8 साल तक दुनिया में फकत 8 बंदे थे जिनको समझ आई थी, समझ नहीं आई थी। इकबाल का खुदी और बेखुदी का कंसेप्ट कई सालों तक समझ नहीं आया था, और फिर वही मिजाज जो शुरू में एंथ्रोपोलॉजी बता चुका हूं, अंगूर खट्टे हैं, कईयों ने फतवा लगा दिया। अब सुन के हैरान होंगे, जो सबसे बड़ा उस वक्त का आलम दीन होता था वो जामिया मस्जिद बादशाही मस्जिद में, इस नेम वाज मौलाना दीदार अली शाह, फतवा लगा दिया जी उन्होंने। फतवा क्या लगाया? उन्होंने फतवा लगा के कहा कि यार ये काफर है। अच्छा क्यों है? वो जो जहनी सतह थी, फिक्र की सतह, वहां पहुंचा ही नहीं था अभी दिमाग। मौलाना बहुत अच्छे इंसान थे, मौलाना इतने अजीम इंसान थे कि उन्होंने गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा भी पढ़ाया, लेकिन यार फिक्री तौर पे थोड़ा सा आगे ना जाना कोई कसूर नहीं होता। अगर मेरा बेटा 3 क्लास का मुझे नहीं समझ पाता, इसमें उसका कसूर नहीं, उसका लेवल अभी वो नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब अजमत के सफर में आप आगे बढ़ते हैं तो अगला एक नया दर्जा आता है, वो क्या है? जमाना आपके साथ टैली नहीं करता। सो अगली बात बड़े ध्यान से सुनिए और लिखिएगा, अजमत नतीजा ये देती है आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। और ये वही अलमिया है जो अर्नेस्ट हेमिंगवे को मिलता है, तो वो कारतूस डाल के गोली यहां लगा के पांव के अंगूठे में फंसा के गन को चला के खोपड़ी के टुकड़े उड़ा देते हैं। मैं किधर जाऊं, किधर जाऊं? ये ख्वाजा फरीद को मिलता है तो कहना की हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलता है कि नहीं है? और कोई कहता है, सूफी कहता है, वासिफ साहब फरमाते हैं, सुड़ वासिफ शीशा की कहंदा, तू भी कल्ला मैं भी कल्ला, तेरा अक्स भी अकेला ही है, तू भी अकेला ही है। ये वो एहसास है जब आप इंटेलेक्चुअली हाई होते 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 आगे जाते हैं, आप देखते हैं, मैं गल उनकी तरह करा, आपको सबके लिए उस सतह से नीचे आना पड़ता है, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और उससे अगली हालत याद रखिएगा वो है इल्जामात तोमत। मैं एक सवाल करता हूं, हम वो तमाम चीजें जो अपने बड़े अजीम लोग जो हमारे नाखुदा बड़े बड़े नाम रहे उन पर एतराज उठाते हैं, क्या वही मसाइल उस जमाने में 100 मोहम्मद दीन और गुलाम दीन के साथ नहीं थे? थे। इतराज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि मारूफ इकबाल था। फेम के नतीजे में सबसे अगली चीज जो आती है अजमत के नतीजे में, वो उंगली आती है या जिसको समझ नहीं आई या जिसका बस नहीं चलता। और ये मैं समझता हूं सक्सेस की सबसे बड़ी प्राइस है। सक्सेस की सबसे बड़ी प्राइस ये है कि यू हैव टू फेस द इल्जाम, यू हैव टू फेस द उंगली। ये उंगली उठा के कोई कह रहा ठीक नहीं है, काफर है, जादूगर है, ये गलत है। वजह क्या है? वो जो झूठ ज्यादा माशरा है बेटियों को दफनाने वाला, उसमें एक सच्चा आ जाता है, वो आगे बताता है कि क्या कर रहे हो, खुदा के बंदो इतने खुदा हो ही नहीं सकते, खुदा तो फकत एक है। वो कहते दिखता नहीं है, कहते दिखे तो जबरन मानना पड़ेगा, तुम कमाल देखो ना दिख के मनवाता है वो। तो वो जब नई बात करता है तो पता लगता है कि जनाबे वाला वो सारे सोच के पैटर्न तो मिट गए, उसको इतना यकीन होता आने वाले जमाने में सारी सोच आम हो जानी है, ये सारी सोच कॉमन हो जानी है। एक जमाना आना है, जमाने का इंटेलेक्चुअल लेवल वहां आएगा, पहुंचेगा, तो उसे पता लगेगा ये तो सच्चा था। तो आज आपकी दूसरी असाइनमेंट ये है कि तारीख के उस दानिश्वर को आपने ढूंढना है जर्मनी या फ्रांस के, जिसके दफन होने के कई सालों बाद उसकी कब्र में से उसे निकाल के पूरी तोपों की सलामी देकर दोबारा दफन किया गया। ये आपकी असाइनमेंट है जी, आज ये आपने रिसर्च करके आना है अगली दफा वो कौन सा दानिश्वर था, और आपने उस शख्स पे भी रिसर्च करनी है जिसको दफन करने के कई सालों के बाद दोबारा निकाल के उसकी डेड बॉडी को रुस्वा किया गया, पता लगा कि उस जमाने का तो हुक्मरान था लेकिन असल में बड़ा 2 नंबर बंदा था। वजह यह है कि जमाना याद रखिएगा हमेशा वक्त के दानिश्वर से थोड़ा सा पीछे होता है, जमाना वक्त के दानिश्वर से थोड़ी सी उसकी स्पीड जो उनसी है उसकी वो साथ टैली नहीं कर पाती। तो अजमत का सबसे बड़ा डायलमा यह है, अजमत बगैर कीमत के नहीं मिलती, और जो बगैर कीमत की होती है भाई अक्सर वो अजमत नहीं होती, वो दिखावा हो सकता है, शोशा हो सकता है, और प्रोजेक्शन हो सकती है, मैग्नीफाइंग ऑफ मीडिया हो सकता है, लेकिन हकीकत बताऊं, आखिरी बात और बात खत्म करूंगा, कि सुकरात के सामने जहर का प्याला रखा गया, वो जहर जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके बाद चंद मिनट्स रहते हैं और बंदा दुनिया से चला जाता है, उसके बारे में बड़ी रवायतें, उसकी मौत के बारे में बड़ी रवायतें हैं। एक रवायत यह कि उसने सितार मंगवाया था आखिरी दफा और कहा था कि मैंने ये सीखा नहीं था, ये सीखना है, एक रवायत ये है। दूसरी रवायत ये है कि जब जहर का प्याला सामने आया तो मुस्कुराने लगा, और मुस्कुराते हुए कहा कि कमाल देखो, ये मुझे मार देंगे, मेरे अफकार को नहीं मार सकेंगे। तीसरी बात, वाकई सच है कि सुकरात नहीं मरा था, असल में मरे तो वो लोग थे जिन्होंने सुकरात को मारा था, क्योंकि एक का भी नाम जिंदा नहीं है। सुकरात की सोच जिंदा है तो सुकरात जिंदा है। सो याद रखिएगा, अजमत, शायद अजमत के हवाले से इंसान मौत को भी गले लगा लेता है। और मेरा उस्ताद यहाँ तक कहता है कि आप कमाल देखिए अजमत के सफ़र का, मौत इंसान को मार देती है और बड़े इंसान की मौत उसको और बड़ा बना देती है। चंद दिन पहले एक सानिया हुआ, एक साहब थे जो वज़ीर दाखिला थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, मेरे चचा उनके मौलिज हैं, तो मेरे चचा बड़े रो रहे थे, तो वो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं, कहते जी वो कर्नल साहब ने, जब मैं अफसोस करने शाम को उनके घर गया हूँ, तो उनके घर में आमों के कुछ लिफाफे थे, एक लिफाफे पे मेरा नाम लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा था ये मेरा भाई बना हुआ है, इसको ये आम पहुँचाते, तो वो आम देने वाला चला गया था। उसके बाद पता लगा कितना अजीम इंसान था। अब दुनिया के बड़े इंसान किसी को पढ़ लीजिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से जा रहे हैं, उसके बाद पता लग रहा है कि कमर पे जो निशान गुसल के वक्त देखे गए, वो उस रात किसी को आटा नहीं मिला, कई बेबसों को आटा जो उनसा था वो शख्स देता था। अजमत, मौत भी आए तो अजमत और अजीम हो जाती है, याद रखिएगा। और नहीं तो इस दुनिया में कितने आए, मौत ने उन्हें मार दिया, लेकिन याद रखिएगा मौत उसको नहीं मार सकती जिसके अफकार नहीं मर सकते। आपका बहुत शुक्रिया सवालों के लिए। वो ये कि सच्चे अक्सर अकेले होते हैं, ये सवाल है। अगर झूठे बहुत से हों तो सच्चा अकेला हो जाता है, बड़ा बुनियादी कुलिया। याद रखिएगा, माशरे में सच्चे हों तो सच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, ये इंसान की जिबिलत में है। आपने कभी कौओं को देखा है, कौवे के बच्चे को छोड़ो सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह याद रखिएगा, झूठे हमेशा झूठों को सपोर्ट करते हैं। मेरा उस्ताद कहता था तुम्हें सच्चा ना मिले जिंदगी में तो पहले खुद सच्चे बनो। ये हो नहीं सकता कि झूठा इंसान सच्चे की तलाश करे, ये पक्का फार्मूला है। सो सच्चा हमेशा अकेला तब होता है जब माशरे में सच्चे ना हो। जब माशरे में सच्चे हो तो फिर एक आसानी बड़ी हो जाती है कि इंसान को दर्द दुख बांटने के लिए अपने जैसा मिल जाता है, उसको एक सहूलत हो जाती है, उसको एक आसानी महसूस होती है कि जो मैं दुख दर्द बयान कर रहा हूँ इस तरह के और लोग भी हैं, है कि नहीं है? अच्छा, एक और गुजारिश सुन लीजिएगा। बाज़ औक़ात आपकी मुसीबतें और तकलीफें इकट्ठा कर देती हैं, ये बड़ा कुली है। कैसे? मस्तवी में जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि मैंने एक तालाब के किनारे हंस को और कौवे को इकट्ठा देखा पानी पीते हुए, करीब करीब ऐसे लग रहा है जैसे इनकी कंपनी बन गई है। कहते हैं मेरा बड़ा इतराज उठा कि फितरत में जुदा है, हंस बड़ा एक खूबसूरत सा और बड़ा डिफरेंट सा हंस है, और वो कौवा वो बड़ी करख्तगी की इलामत है, सिम्बॉलिकली को बहुत अच्छा नहीं है ज्यादातर कंट्रीज में एक्सेप्ट ऑफ एक। वो कहते जब मैं पास गया तो देखा दोनों की टांगें टूटी हुई थी। वो समझाना ये चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात मजबूरियां अच्छे और बुरे को इकट्ठा कर देती हैं, लेकिन याद रखिएगा मजबूरियों का साथ आखिरकार खत्म हो जाता है। मैं एक बंदे ने मुझे फंसा लिया, मिसाल लीजिए, मैं दिल में सोचा बेटा कब तक, चंद दिन की बात ही है ना, ये मेरा काम होना है, मैंने चले जाना उसके बाद, तुझे बर्दाश्त करने की सजा है, काट लेंगे, काम पड़ गया ना, अब क्या करें, काम खत्म होगा तो भाई तेरे से जाना है। कमाल ये, कोई काम ना हो तो कोई आए। हुसन क्या है, उस्ताद हमारा कहने लगा एक दिन कि मैं टीचर हूँ, और बताने लगा मेरा कोई जानने वाला साबिर साहब हमारे आपके मेरे इकट्ठे उस्ताद, वो फरमाते हैं एक दिन कहते हैं ईद का दिन था तो मुझे ख्याल है मैं टीचर हूँ, कम से कम 1500 मैसेज आया, को 25-30 केक आए, को बेशुमार तालिब इलम स्टूडेंट घर मिलने आ गए। ईद मेरी अकेली हो तो मौत बन जाती है, अकीद रौनक वाली ईद होगी। कहते मैंने अपने एक जज, सेशन जज कजन का पता किया उस दिन, वो तन्हाई की मौत मरा हुआ था, जब तक सीट पे था मेला था, सीट से उतरा अकेला हो गया। तो बाज़ का ताकत के दम से मेला लगा होता है, मियाँ साहब पढ़ो 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 पढ़ो, चोई साहब एहसैन कर दो, चोई साहब भारी बड़ी मुश्किल ना आई है, चोई साहब मेरी अर्जी अग्गे पहुँचा दो, कैन नॉट। और दुनिया में वैसे अगर देखा जाए, अगर बंदा सच्चा है तो फिर उसे सीट पर बैठने की जरूरत नहीं, ये याद रखिएगा।